चलिए, तफसीर से पहले हम आयात का खुलासा देखेंगे। बहुत ही अहम सबक है। आज के सबक में जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी, सबसे पहले ज़ुबान का सोच समझ कर इस्तेमाल। इसको मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे, क्योंकि अरबी में एक कहावत है जिसका खुलासा ये है कि तलवार का घाव तो भर जाता है लेकिन ज़ुबान का घाव नहीं भरता। और ख़ास तौर पे जब इंसान दीन के कामों पे आ जाता है, जब मखलूक को खालिक से जोड़ने का काम करे, तो उस वक़्त कितना सोच समझ के बात करने की ज़रूरत होती है। ये हमारे आज के सबक का पहला मौजू है, और ख़ास तौर पे हम सबको अपने मुहासबे की भी इसमें मदद मिलेगी कि क्या हमारी ही बातें ऐसी तो नहीं होती कि जिनकी चिड़ में आकर लोग दीन की बात को नहीं मानते। फिर दूसरी चीज़ कि किसी को जन्नती और जहन्नमी होने के फतवे तुम ना दो। रब्बुकुम आलमु बिकुम, तुम्हारा रब खूब जानता है। तुम क्या जानते हो कि कौन कैसा है? तुम जाहिर पे कयास करो और मामला अल्लाह के हाथ में छोड़ दो। फिर अगली चीज़ हम देखेंगे कि अल्लाह जब चुनने लगता है तो छोटे कद के आम शक्ल के दाऊद को चुन लेता है, लेकिन जब अल्लाह का चुनाव इल्म की बुनियाद पे होता है तो दूसरों को एतराज़ करने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर अगला मौजू है आज का वसीला। पीछे बात हो चुकी है सूरत मायदा में, यहाँ उसी पे हल्की सी बात दोबारा होगी कि जिनका वसीला तुम ढूंढते हो वो तो बेचारे खुद अल्लाह से अपने लिए वसीला ढूंढ रहे हैं। फिर अगली चीज़ हम देखेंगे कि अल्लाह ताला किसी बस्ती को तबाह करने से पहले वहाँ पैगाम पहुँचाता है। और अगली बात कि जब अल्लाह की तरफ से कोई निशानी या नेमत आ जाए तो उसका इनकार करना या उसकी नाकदरी करना अल्लाह के अजाब को बुलाने के बराबर है। फिर अगली चीज़ हम ये देखेंगे कि निशानियाँ देखकर भी लोग क्यों नहीं मानते, क्या रुकावटें हैं रास्ते की। और फिर देखेंगे कि शजरे मलूना क्या है और कुरान में इसका जिक्र क्यों आया। और उसके बाद फिर बहुत तफसील से आदम और इबलीस का किस्सा और इबलीस के हथकंडे। सबसे ज़्यादा डिटेल से इबलीस इन आयतों में खुल के नज़र आता है। सूरत अलाराफ में भी उसके धमकियां थीं दाएं से बाएं से आगे से पीछे से आने की, लेकिन इधर तो ऐसे लगता है कि वो हमारी नस्लों को कच्चा खा जाएगा। तो हम तफसील से देखेंगे जिसमें शैतान की आवाज़ यानी बातिल आवाज़ें, जिसमें म्यूज़िक और खिलाफ हक हर बात का आएगा। तो इस सबक का भी तरीक़ाकार वही होगा कि शुरू का हिस्सा नस्बतन तेज़ी से गुजरेगा और जो आखिरी हिस्सा है उसके अंदर बहुत सारी बातें आएंगी कि जिसको हम देखेंगे। अब चलते हैं आयतों के साथ, आयत नंबर 53 से। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वकुल लि इबादी यकूलुल लती ही अहसन। और आप मेरे बंदों से कह दीजिए कि वही बात कहें जो बहुत अच्छी हो। कौन किसको पैगाम दे रहा है? अल्लाह ताला नबी को अपने बंदों के लिए पैगाम दे रहा है। पहले तो खुद से पूछिए, क्या मैं खुद को इस पैगाम में शामिल समझती हूँ? और यहाँ एक और बात भी याद रखिए कि मक्की सूरतों में अहले ईमान को बराहे रास्त मुखातिब नहीं किया जाता। इसके बरक्स मदनी सूरतों में आप देखते हैं तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, क्योंकि उस वक़्त ईमान की नस्बतें वाज़े हो चुकी थी। और इसका आगाज़ किबले की तब्दीली के बाद की आयतों में हुआ। ये बड़ा बारीक नुक्ता है। जब मुसलमान एक बाकायदा उम्मत वसत के मनसब पर फायज हो चुके थे तो उनको या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर पुकारा गया, लेकिन उससे पहले अहले ईमान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत यानी आपके मीन आपके ज़रिए से पुकारा जाता है, जैसे कि यहाँ कहा गया। ये भी तो एक अच्छा अंदाज़ होता है ना, किसी की लाज रखना, किसी के ज़रिए बात कहलवा देना, ये बात इंसान को मोर केयरफुल करती है। और जब तक आपस में ताल्लुक़ नहीं बनता तो बस दफ़ा दूसरे के ज़रिए बात करवाना ज़्यादा मुनासिब होती है, ये बात भी यहाँ से पता चलती है। अब कहो क्या, यकूलुल्लती यासन, अच्छी बातें किया करो। कब अच्छी बातें किया करो, ये कौन सी खुश इखलाकी का सबक सिखाया जा रहा है? तो पहली बात तो ये है कि दीन की तबलीग करते हुए अच्छी बात किया करो। अल्लाह ताला ने सूरत नाहल के आखिर में उदु इला सबीली रब्बी कबिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना कहकर वहाँ ही बहुत खूबसूरत तरीका सिखा दिया था, लेकिन यहाँ तो अब इसको आहसन के दर्जे पे फाइज कर दिया कि जब भी तुम ईमान वालों को लोगों को अल्लाह की बात बतानी पड़े तो अच्छी बात करो। यही बात सूरत हामीम सजदा में भी आती है कि वमन अहसन कौलम मिम्मन दाअ इलल्लाह, उससे भी अच्छी बात किसी की हो सकती है या होनी चाहिए जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। गोया कि तबलीग में खूबसूरत अल्फाज, खूबसूरत अंदाज इख्तियार करना चाहिए, लेकिन खूबसूरत अंदाज से मुराद आर्टिफिशियल नहीं है, ऐसे राग लापने वाली बात नहीं, दिल की बात, दर्दमंदी वाली बात, दिल में उतरने वाली बात, हल्की फुल्की बारिश की तरह दिल में रिमझिम करती हुई बात कि जो अगले के दिल की जमीन को नरम कर दे। सूरत अनकबूत आयत 46 में अल्लाह ताला ने अहले किताब से मामला करते हुए हमें फरमाया कि वला तुजादिलु अहलल किताब इल्ला बिल्लती ही अहसन, कि अहले किताब से बात करते हुए भी आसन बात करो। तब ये बताइए कि मुखालिफीन से बात करते हुए आसन बात करनी है, तो फिर जब मुसलमानों से बात करनी पड़े तो फिर क्या बात करो? जहन्नमी, काफिर, मुनाफिक, खोटे और न जाने क्या कुछ। अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ हमें एक असूल दिया कि दीन की बात लोगों को बचाना ऐसे ही है जैसे किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। आप इमेजिन करिए कि कोई एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, लोग उसको लॉन्च करने से पहले उसके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर उसके बाद लोगों को उसके फ्री सैंपल्स देते हैं, फिर पूरी ख्वाहिश रखते हैं कि जो सैंपल दिया जाए उसकी क्वालिटी एक्सीलेंट हो। क्यों? ज़रा सी गलत बात से कस्टमर का जहन बदल जाता है, ऐसे ही होता है ना, लेते लेते कस्टमर छोड़ देते हैं। बाज़ दफ़ा आपने भी शॉपिंग के दौरान देखा होगा कि बाज़ दफ़ा वो जो दुकानदार होते हैं ज़रा सी गुस्से में आते हैं, झुंझलाहट में आते हैं, चिड़चिड़ी बात करते हैं, छोड़ो लेना है तो लो, देना है तो दो, ये वो, तो फौरन आपका माइंड बदलता है, आप चल पड़ते हैं। तो याद रखिए कि कपड़ा एक नहीं दूसरा ले लेंगे, जूता वो नहीं लिया दूसरा ले लिया, लेकिन जिसने आपकी बात की कड़वाहट और आपके माथे की तेवरी और तुम मिजाजी से दीन को रिजेक्ट कर दिया, वो किधर जाएगा? सोचने की बात है। दीन का प्रोडक्ट बड़ा खूबसूरत है, आज हम मुसलमानों ने इसको देते हुए केयरलेसनेस इख्तियार कर ली। तर्क तुर्श बातें, कड़वी बातें, करने तो करें, चुप करके सुने, खामोश रहें। मैं खुद अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत सीखती हूँ कि बाज़ दफ़ा लोग इस तरह की कड़वी बातें करते हैं कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं उनकी बात सुन के आगे बोलूं। और बहुत दफ़ा मैंने देखा है जब मैं कभी भी आम लोकल दरसों में जाती हूँ, क्लासरूम का माहौल तो अच्छा होता है, लेकिन जब हम पब्लिक दरसों में जाते हैं तो हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल तब होती है जब घर वाले ने अपनी दोस्तों को एज अ पार्टी या कोई गेट टुगेदर या ईद के नाम पर बुलाया होता है, हर एक फुल एक्सपोजर के साथ आता है और सुनने नहीं सुनाने आता है और बातें बातें। एक ऐसी जगह मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, पार्टी थी उनकी, उनको मेरा पता जब चला अचानक एक दो तीन घंटे पहले, मैंने उधर ही जा रही थी तो मैसेज दिया कि अगर आप आ रही हैं तो प्लीज़ ज़रूर आएँ, थोड़ी देर आएँ। तो मैंने मना नहीं किया, उधर से होके मैं उधर चली गई। तो जब मैं इधर गई तो भरपूर पार्टी का माहौल था और खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो रहा था। अब मैं जब अंदर गई तो मुझे तो लगा कि ये तो बेचारियाँ नहीं बात करेंगी, और मुझे पता चल गया कि 3-4 घंटे से आके बैठ के कुरान पढ़ रही थी और सपारे वगैरह हो रहे थे। वट एवर, मैंने दिल में सोचा कि यहाँ बात नहीं करने की, थक भी चुकी हैं और सीटीज दे देंगे, बात ख़त्म होगी। खैर, मैं उनके कहने पे वहाँ के बैठ गई। तो जब मैं बैठी तो बिल्कुल मेरे साथ ही एक और सिस्टर थी जो बड़ी उम्र की लगी, तो कहती थी शुरू करें जी, आप शुरू करें। मैंने उन्हें कहा कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त साथी सुनने के मूड में नहीं होंगे, तो मुझे कहती हैं आप जरा इनको सुनानी शुरू करें, ये सब ठीक हो जाएंगी। यानी उनकी, मुझे वो टोन भी नहीं अच्छी लगती और मुझे लफ्ज़ भी अब याद नहीं है, उनकी बात कहने का अंदाज इतना कड़वा था, इतना कड़वा। एक तो वो मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रही थी कि आप शुरू करें, करें जी शुरू, बस करें करें शुरू, और दूसरी उन साथियों की कर रही थी इनको आप जरा सुनानी शुरू करें, ये ठीक हो जाएंगी। तो मैंने बड़े जितना मेरे साथ कुंजी बोलता ना, मैं उतनी आहिस्ता बोलती हूँ, बल्कि चुप ही करती हूँ कि आप बोल लें, आप शौक पूरा कर लेंगे ना जब फिर मैं बोलूँगी। मैंने उनको आहिस्ता से दबी आवाज से कहा कि मुझे सुनानी नहीं आती, मुझे लोगों को सुनाना नहीं आता, मैं तो सीधी सीधी बात करती हूँ। खैर, उतने में माइक वगैरह सेट हो रहा था, साथी जो साथ थे वो कह रहे थे, मुझे कहती हाँ आपने ये पुरजे शुरजे भी तो अपने ठीक करने। ये वो मुसलसल मुझे रिजेक्ट कर रही थी, उनको मैं भी नहीं अच्छी लग रही थी कि ये बात क्यों नहीं शुरू कर रही, ये इतनी तैयारियां क्या। खैर किस्सा मुख्तसर। मैंने उन्हें कहा कि सिस्टर आप बात कर लें, आप करें इनको, आपकी बात मुझे लगता है अच्छी है, आवाज़ अभी माइक नहीं लगा तो ये आपकी आवाज़ सुन भी लेंगी। कहती मैं तो इनको सुनाती रहती हूँ। उसे मुझे पता चला कि वो भी माशाल्लाह कोई मुबल्लिगा ही थी। किस्सा मुख्तसर, याद रखिए तलवार और छुरी का कट आपकी उंगली में एक दिन लगता है ना, कई दिन तक आप उसकी दर्द महसूस करते हैं। तो जब आप लोगों को दीन की बात करें, अगर आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे वो कभी आपकी बात नहीं सुनेंगे। और याद रखिए आपके मुखातिबीन में कोई शहर के बड़े पौश लोग नहीं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। आप अपने बच्चे की इज्जत नहीं करेंगी तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, अपने शौहर साहब की इज्जत नहीं करेंगे तो वो कभी आपकी जुबान से बात नहीं सुनेगा। पहले खुद को मोल्ड करें, नरम करें, कायल करने से पहले माइल करें। हम लोगों के जहन पकड़ना चाहते हैं, पहले उनके दिल पकड़ें। ये जो आसान तरीका है ना, सॉफ्ट तरीका है, पहले नरम करो। जैसे किसान पहले मट्टी को नरम करता है फिर बीज डालता है, सख्त मट्टी में बीज डालेंगे एक भी पौधा नहीं उगेगा। तो लिहाजा अच्छे तरीके से बात करो। और बात भी यही है कि जब तुम अच्छे तरीके से बात करोगे लोगों को समझ आएगी। फिर इसका एक दूसरा एंगल आम तौर पे भी ले लीजिए कि दीन का मामला तो है ही, आपस के मामलात में भी खुश असलूब रहो, जाती जिंदगी में। अब ये नहीं कि आप दर्स देने बैठे हुए थे तो ये सारी बातें थी, नहीं। इस आयत का खुलासा क्या है कि गुफ्तगू के दौरान जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करो, वरना होगा क्या, इन्न शैतान यनज़ुगु बैनहुम, यकीनन शैतान इनके दरमियान झगड़ा डाल देगा। क्यों डलवाता है वो झगड़ा जालिम? क्योंकि इन्न शैतान काना लिल इंसानी अदुव्वन मुबीना, यकीनन शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। दुश्मन की तो ख्वाहिश होती है आपके नुकसान की, तो वो तो खुला दुश्मन है, वो तो झगड़े डलवाएगा। आप नोट कर लीजिए, ताल्लुकात की खराबियां अक्सर 98% जुबान के गलत इस्तेमाल की वजह से होती हैं। अगर आप गोश्त काटते हुए भी सीधी छुरी की बजाय उल्टी साइड से गोश्त काटने लग जाए ना, तो गोश्त जो होता है ना वो खराब हो जाता है, ऐसे चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमारे आपस के ताल्लुकात में हमारी जुबान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। बस दफा होता है कि हम बेतकल्लुफी में अपने दोस्तों के साथ ऐसी बातें करने लग जाते हैं जो उनको चुभ जाती हैं। मजाक कर दिया, कुछ कह दिया, चल कंजूस, चल मोटी, चल छोटी। दावतों में, पार्टियों में अक्सर आप देखा करें जब बेतकल्लुफ महफिलें होती हैं तो लोग अपनी अपनी प्यारी दोस्तों के साथ किस तरह की बातें करती हैं। हो सकता है दो चार बातें वो बर्दाश्त कर रहे क्योंकि वो भी आपको करती है। याद रखिए एंड ऑफ द डे कोई एक बात उसको चुभ जाएगी और वो दिल में गिरा बांध के जाएगी, और घर जाके फिर वो रोएगी, फिर मियाँ से कहेगी सारा मूड खराब कर दिया मेरा इसने। ये खुद को बड़ा समझती है, ये बहुत खुद पसंद है। और अक्सर आप देखें कैसी बातें वो लोग करते हैं जो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। तो अल्लाह तआला कहता है छुरी इस्तेमाल करते हुए भी तो इस्तेमाल करने से पहले देखते हो ना, तो क्या ये जुबान की छुरी जो तुम्हारे मुंह में है इसको सही इस्तेमाल नहीं करोगे? देखिए किसी ने जुबान से पूछा कि तुम 32 दांतों के बीच में कैसे रहती हो? अगर अपनी जुबान में संभले तो ये जो 32 20 32 दांत हैं ये जुबान के दुश्मन है ना, जरा सी जुबान के दांत के नीचे आ जाती है तो जुबान कट जाती है। तो कहा कि तुम इनके बीच में कैसे रहती हो? तो कहा अपनी नरमी की वजह से, जिधर दांत आता है उधर से मुड़ के इधर आ जाती हूँ। तो नरम दमे गुफ्तगू, गरम दमे जुस्तजू, रज्म हो के बज्म हो, पाक दिलो पाक जू। ये एक अच्छा लीडर होता है। ये चार सिफतें अपने अंदर ले जाएं, आप कमरे में छुप के काम शुरू करें, अल्लाह आपको बाहर ले आएगा। नरम दमे गुफ्तगू, गुफ्तगू का अंदाज नरम, गरम दमे जुस्तजू, अंदर से जोशीले, एंथुसिस्टिक और पुरजोश और आइडियाज लाने वाले और इनिशिएटिव। ये नहीं कि किसी ने कहा ही नहीं तो किया ही नहीं, पता ही नहीं चला, यानी अंदर से गर्म होते हैं, पुरजोश, पाक दिल पाक जू। दिल पाक हो दूसरों के लिए, जब दिल साफ होता है ना तो जुबान साफ होती है। याद रखिए जुबान तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है हमारे दिल का। जिस बंदे के लिए हमारे दिल में मोहब्बत होती है हमारी जुबान शहद उंडेलती है उसके लिए। समझ नहीं आता डिक्शनरी में कोई इससे भी मीठा और प्यारा लफ्ज हो कि जो हम उसके लिए लगाएं। और जिसके लिए दिल खट्टा, खुद ब खुद बदगुमानियां और बेकार बातें, तो फिर जुबान भी तलख होती है। बेशक छुपाएं, छुपता नहीं है। अच्छी बात भी करेंगे ना तो चेहरा साथ नहीं दे रहा होगा आपके अल्फाज का, तो लिहाजा अच्छे तरीके से मामले करें। और ख़ास तौर पे आप देखिए, जब आप दीन की तरफ निकलते हैं ना, तो बस लोग मुबल्लिग से इख्तलाफी सवालात पूछते हैं। किसी महफिल में आपसे ऐसा सवाल पूछवा लेंगे कि जो बैठे हुए किसी एक पे चोट पड़े, सोच के जवाब दें। मसलन कोई आपसे आके पूछता है, ये बताएं कि नेल पॉलिश जायज़ है, तो आप शुरू हो गए लेक्चर देने। उसी महफिल में हो सकता है 10 सिस्टर्स ने नेल पॉलिश लगाई हो, सकता है उनको लगाने में कोई हर्ज नहीं, उनकी नमाज छुट्टी हुई थी, कुछ भी था। और गुमान कीजिए जिसको नेल पॉलिश लगाए देखें कि इसने पहले वजू किया होगा, फिर नेल पॉलिश लगाई, और घर जाके दोबारा उतार के वजू करेंगी। आप क्यों बदगुमान होते हैं नेल पॉलिश वालों को देखकर? लेकिन अगर आपने वहां एक तकरीर झाड़ दी ना, तो बहुत सारे लोग पलट जाएंगे। तो सारी बात का खुलासा, जिसके बाद आगे चलेंगे, कि आप जुबान को ये सोच कर इस्तेमाल करें कि मेरा एक जुमला लोगों को जन्नत से निकाल कर जहन्नम की तरफ ले जाएगा। कोई रास्ते में चलता जाता है ना, तो आप उसको जाते जाते सिर्फ हल्का सा मिसगाइड कर दे कि भाई ये नहीं वो रास्ता है, तो आप देखते हैं कि वो अगर अकल ना इस्तेमाल करे या अगर आप पे यकीन रखे तो वो पलट जाएगा। तो जब पलटेगा तो जन्नत से उतर जाएगा। तो फिर क्या होगा जब हम इस तरह की तंजिया बातें करें? तो तबलीग में ना तंज, ना ताना, और ना गुस्सा, और ना जोश, और ना जज्बात एक खास हद तक बढ़े हुए। बाज लोगों के मुंह से भी झाग निकल रही होती है, आंखें भी सुरख हो रही होती हैं, रंग भी लाल। कभी कभी हो सकता है आप रो पड़े, आपकी आवाज ऊंची हो गई, ये तो एक जिंदगी की अलामत है। आपने ऐसी उम्मत की बात की कि आपके आंसू निकल आए, आपकी आवाज रिंद गई, ये तो हो सकता है, ये तो नेचुरल है। आहिस्ता आवाज के बीच में जब कभी कभी आवाज ऊंची हो, तो फिर सुनने वाले सोचते हैं कि आज क्या हो गया, इनकी आवाज ऊंची हो गई, इसका तक इनका दर्द इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अगर आदत ही हो इतना ऊंची चीखने की, तो फिर आपकी बात का कोई असर नहीं होता। और आम लोग क्या कहते हैं, हमने जी सच्ची बात की है, तो फिर सच्ची बात की है लेकिन बुरे तरीके से की है। अल्लाह की बात तो की लेकिन अल्लाह के बताए हुए तरीके से नहीं की, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं दी। और याद रखिए, झगड़े अमूमन दीन वालों के कब होते हैं? जब हर बंदा अपने बड़े पे झगड़ना शुरू हो जाता है, मेरा लीडर, मेरा बड़ा, मेरे सरदार फुला पेशवा, तो पर्सनैलिटीज़म जब आ जाता है ना, तो झगड़े होते हैं। अल्लाह कहते हैं सबको छोड़ दो, बस अपने काम करो। और ये अल्लाह के नबी का अखलाक था कि कबाइल को शीरो शकर कर दिखाया, झगड़ने वालों को किस तरह अल्लाह के नबी ने रखा। तो इकामत दीन के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मोमिनीन के सामने बहुत सारी रुकावटें, जो मुखातिब होते हैं ना, वो पहले तो जहालत की दलदल में फंसे होते हैं, फिर जाहिलियत के एतकाद नस्लों से चलते आते हैं, फिर उनको अपने रस्म और रिवाज जान से ज़्यादा प्यारे होते हैं, बाज़ दफ़ा सियासी और माशी मुफादात भी होते हैं कुछ कामों के साथ, फिर गैरत और हमीयत भी होती है। इन सब का वो दिफा कर रहा होता है आपकी दीन की तालीम के मुकाबले में, तो आप उनसे इतनी कुर्बानियाँ मांगेंगे, तो फिर नरमी से मांगें, तहम्मुल से, बर्दबारी से, बर्दाश्त से, इश्तियाल में नहीं आना। देखिए अल्लाह के नबी की इसमें सुन्नत मौजूद है। अभी आज सुबह मैं एक छोटा सा रस्ते में बल्कि पढ़ रही थी, शायद आज की आयत के साथ बड़ा बेहतरीन है, मैं आपको सुना देती हूँ कि हम सबको दीन का क्या मिजाज है। क्योंकि आज हम मुसलमान भी तो छोटी छोटी बात पे, इश्तियाल पे, और मुसलमान गैरों के आगे जा के चीखने लगते हैं। मैं पढ़ के सुनाऊंगी तो ज़्यादा बात अच्छी समझ आएगी, बात वैसे आपके लिए नई नहीं है। गज़वे तबूक जो सन 9 हिजरी में हुआ, इसके वाक्यात में से एक वाक्या ये है कि सफ़र के दौरान एक मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई। आपके साहब इसकी तलाश में निकले, एक मुसलमान जो ऑफ कोर्स दिल से मुनाफिक था, वो भी शरीक सफर था, इसका नाम जैद बिन अबिल सुलैद था, यानी जैद कह लीजिए, इसका नाम जैद था। इसने साहबे रसूल को इधर उधर जाते हुए देखा तो पूछा, भाई क्या बात है? एक साहबी ने कहा कि रसूलुल्लाह की ऊँटनी गुम हो गई, हम इसको तलाश कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि सिनेरियो क्या है कि अल्लाह के नबी की ऊँटनी साथी ढूंढ रहे हैं। इस पर जैद ने तंज करते हुए कहा, अरबी की कोटेशन है, अलैहिस्सा मुहम्मदुन यज़्मु अन्नहु नबीयुन, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने बारे में ये गुमान नहीं है कि वो नबी हैं, और वो तुम लोगों को आसमान की खबरें बताते हैं, और इनका हाल ये है कि इनको ये भी मालूम नहीं कि इनकी ऊँटनी का तन समझ आए कि आसमान की तो खबरें इनको बड़ी हैं और अपनी ऊँटनी की खबर नहीं। दूसरे लफ्जों में इसने क्या किया, तौहीन रिसालत की, नबी को गाली दी। रसूलुल्लाह को जब मालूम हुआ तो आपने फरमाया, कि एक आदमी ने कहा है, अब उसका नाम नहीं लिया, इनडायरेक्ट बात की, ये मोहम्मद तुमको खबर देते हैं कि वो नबी हैं और इनका गुमान है कि वो तुमको आसमान की खबरें बताते हैं, हालांकि वो नहीं जानते कि इनकी ऊँटनी कहाँ है। मेरा हाल खुदा की कसम ये है कि मुझे इसके सिवा किसी चीज़ का इल्म नहीं जो अल्लाह ने मुझको बता दिया है। पहले तो अपनी पोजीशन क्लियर की कि मुझे गैब नहीं पता, और अब अल्लाह ने मुझे बताया है कि ऊँटनी कहाँ है, वो इस वादी में फुलां घाटी में है, एक दरख्त में मोहार की रस्सी उलझने ने इसको रोक लिया है, तुम लोग वहां जाओ और इसको लेकर मेरे पास आओ। अब आपने असल खबर भी दे दी। इब्ने इसहाक कहते हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि इसके बाद जैद ने तौबा कर ली, शर्म आई ना उसको कि मैंने जो बात कही थी अल्लाह ने वही वही के लिए करके दिखा भी दी। दूसरा कौल ये कि वो बराबर अपने इस शर्म में मुबतला रहा यहां तक के मर गया। इस वाक्य के बाद एक सूरत ये थी कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आता कि जैद शुतमे रसूल का मुजरिम है, यानी रसूल को गाली दी है, इसको फौरन कत्ल कर दो, मगर ऐसा नहीं हुआ। आपने सिर्फ ये बताने पर इक्तफा फरमाया कि ऊंटनी फुला जगह मौजूद है। अब ये जुमला गौर से सुनने का, जिसकी आज हम मुसलमानों को और खास तौर पे मुस्लिम लीडर्स और मुस्लिम मुबल्लिगीन को जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जैद को कत्ल करवाते, जोश में आके करवा सकते थे ना, तो सिर्फ एक शख्स का कत्ल होता, यानी आपको गाली देने वाला या आपकी तौहीन करने वाला एक शख्स कत्ल हो जाता। मगर जब आपने खोई हुई ऊँटनी के बारे में सही सही खबर दे दी, तो आपने इसके फितने को कत्ल कर दिया। और बिला शुबा किसी शख्स को कत्ल करने के मुकाबले में इसके फितने को कत्ल कर देना ज्यादा अहम है और इससे कहीं ज्यादा मुफीद भी है। किल विद काइंडनेस। वो मर जाता है ना, तो उसके कई हामी जो थे वो इस्लाम के खिलाफ हो जाते हैं। आज हम मुसलमानों को इतनी अकल नहीं आ रही, हम कितने लोगों को मरवाते और पिटवाते हैं लेकिन असल बात पे नहीं आते। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 54 में, रब्बुकुम आलमु बिकुम, तुम्हारा रब तुमसे खूब वाकिफ है, कौन कितना नेक है, कौन कितना बद है, कौन किस दर्जे का नेक है, कौन कैसा है। यरहमकुम, चाहे तो तुम पर रहम फरमाएगा और अगर चाहे तो तुम्हें अजाब देगा। वमारसलनाक अलैहिम वकीला, ए नबी, हमने आपको इन पर दरोगा बनाकर नहीं भेजा गया। कितना खूबसूरत पैगाम है कि हिदायत को कबूल करना या ना करना हर शख्स का जाती मामला है, उसका जाती इंतखाब है, उसकी पर्सनल चॉइस है। आपका काम इन तक पैगाम पहुंचाना है, आप इनको हिदायत पर लाने के मुकल्लफ नहीं है। यानी डाकिये का काम पोस्ट को पोस्ट बॉक्स में डालना होता है, बाद में कोई उस लेटर को खोले ना खोले, खोल कर उस पर अमल करे ना करे, ये उसकी मर्जी, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो गोया के कहा गया कि किसी के जन्नती और जहन्नमी होने के फतवे ना दो। मुसलमानों की जुबान पर ऐसे दावे नहीं आने चाहिए कि हम जन्नती हैं और फलां दोजखी हैं, ये अल्लाह का फैसला है। वही इंसानों के जाहिर बातिन उनके हाल मुस्तकबिल से वाकिफ है, लिहाजा जुबान का इस्तेमाल कम करो। कितनी खराबियां हैं ये, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता क्या था कि कुफार की ज्यादतियों से तंग आकर मुसलमानों की जुबान से हो सकता है ऐसे जुमले निकल जाते हो कि तुम तो दोस्ती हो, तुम आग में जाओगे, तुम हमें सता रहे हो। का नहीं, नबी का काम दावत देना है, लोगों की किस्मतें इसके हाथ में नहीं है कि वो किसी के हक में रहमत का और किसी के हक में अजाब का फैसला करता फिरे। याद रखिए कि अल्लाह के नबी ने खुद कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन आपकी तरफ बात करके हम सबको सिखा दिया कि तुम अपने आप को बचो, जिसका घर होता है वो उसका फैसला करता है। इसके बाद आप देखिए कि अगली आयतों में अल्लाह ताला कुछ और बातें ऐसी बयान फरमाते हैं जिससे हमें अल्लाह ताला की कुदरतों का एहसास होगा।